نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. سورة تكوير آیت 15 سے اینڈ تک، قرآن پاک کی حقانیت، یعنی یہ جو وحی ہے یہ حق ہے، اس کی حقانیت کے اوپر دلائل ہیں. پڑھنے سے پہلے تھوڑی سی بات آپ لوگوں کو بتاؤں گی، پھر آگے انشاءاللہ آیات آسان ہو جائیں گی آپ کے لیے. دیکھیں، قرآن پاک حق ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہم کہتے ہیں، مگر ہو سکتا ہے، ہم تو ایمان رکھتے ہیں تو ہم تو سمے نہ آتا نہ ہے، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال آئے، کبھی کوئی انگلی اٹھائے اس چیز کے اوپر. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو صحابہ نے سنا، ٹھیک ہے، اور اتنے صحابہ نے سنا اور آگے سے ان کے انہوں نے لکھا بھی، اور ان کی زبان سے پھر آگے تابعین نے بھی سنا، اتنی کثیر تعداد میں لوگوں نے سنا کہ ان کو ٹیلی کیا جائے، میچ کیا جائے، یا لکھی ہوئی چیزوں کو میچ کیا جائے، تو کوئی ایک حرف بھی ادھر سے ادھر نہیں ہے. تو وہ تو یعنی کنٹینیوٹی کے ساتھ آگے تک پہنچا، لیکن پیچھے جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جبرائیل علیہ السلام سے سنا؟ کیا ان کی جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی؟ اور جبرائیل علیہ السلام کیا انہوں نے صحیح صحیح بات آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ نہیں بتائی؟ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں ایسا کوئی خیال شیطان ڈال دے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ کبھی کسی کے دل میں ایسا شک و شبہ بھی پیدا نہ ہو. کون لے کر آیا اس قرآن کو، اور وہ کیسا ہے فرشتہ جو لایا، جس کو یہ ڈیوٹی دی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے آگے لوگوں تک بیان کیا، اس کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دی ہے. فلا اقسم بالخنس، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے کی. یہ کیا ہے پیچھے ہٹنے والے؟ یہاں پہ بتایا نہیں گیا کہ کس چیز کی قسم کھائی گئی، صرف ایک اس کی صفت بیان کی گئی، وہ جو پیچھے ہٹنے والے ہیں. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ستارے ہیں. ستارے آپ دیکھیں جو آگے بات بھی الجوار الکنس، ان تینوں صفات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ستاروں کی بات کی گئی، کیونکہ آبویس ان کے اوپر ہے. ستارے پیچھے ہٹتے ہیں کیسے؟ کہ صبح میں نکل چھپ جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، رات کو نکل آتے ہیں، اور پھر اپنی چال بھی چینج کر لیتے ہیں. سردیوں میں کچھ ہے اور گرمیوں میں کچھ اور ہے، آپ کو نظر آتے ہوں گے آسمان پہ کہ کبھی اس جگہ پہ ہیں اور کبھی اس جگہ پہ. پھر رات میں بھی پوری رات سفر کرتے ہیں، چلتے ہیں، ایک رات کی شروع میں ایک جگہ پہ ہوتے ہیں اور رات ختم ہونے لگتی تو دوسری جگہ پہ پہنچے ہوتے ہیں. الجوار الکنس، سیدھے چلنے والے، اور کنس چھپ جانے والے، صبح میں روشنی میں چھپ جاتے ہیں. یہ بہت بڑی قسم ہے. جیسے اب پہلے بات ہوئی کہ ان لوگوں کو تو ستارے، ان کے لیے ستارے ایسے ہی تھے کہ وہ آسمان کی طرف دیکھیں اور ٹمٹماتی بھی کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ ستارے ہیں. آج جب انسان اپنے اتنی ترقی کر لی اس علم میں کہ اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ستارے کتنی بڑی چیزیں ہیں، حتیٰ کہ ہمارا سورج جو ہے وہ بھی ایک ستارہ ہے، اور یہ تو بہت چھوٹا ستارہ ہے، اس سے بڑے بڑے کئی ستارے ہیں. اور کیا کیا ان کی خصوصیات ہیں، اور کیسے ان کی چالیں ہیں، اور وہ چلتے ہیں اور اپنے آربٹس میں گھومتے ہیں، اور پھر کس طرح سے وہ ستارے اپنی اپنی گیلیکسیز میں ہیں، اور کتنے کثیر تعداد میں ہیں، اور کیسے وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں. बहुत सारी चीज़ें हमें सितारों के बारे में पता चली और उनकी स्पीड वगैरह क्या है, तो उससे सारी चीज़ों से अब हमें, और ये भी कि वो कितने हमसे दूर हैं, कहाँ से उनकी लाइट आ रही है और कितने अरसे में हम तक पहुँचती है, बहुत सारी चीज़ें पता चली। तो अब उससे इंसान की अक्ल दंग रह जाती है कि अल्लाह की ये भी कैसी एक मखलूक है, कैसा अल्लाह ने इनको बनाया, जिस रब ने इनको बनाया इतनी देहकल चीज़ों को, इतनी बड़ी चीज़ों को, और जिसकी इतनी बड़ी कायनात है, और अब खुद कितना बड़ा होगा। तो अल्लाह ताला ने इन सितारों की कसम खाई है, और वल्लैलि इज़ा असअस, और रात की कसम जब वो रुखसत होती है, वस्सुबह इज़ा तनफ्फस, और सुबह की जब वो सांस लेती है। अब देखें यहाँ पे सितारों की कसम और रात और दिन की कसम खाई गई, किसी बात पे कसम खाई गई ना, बिल्कुल जैसे आप देखें ये जो हमने पहले आयात पढ़ी, 13 आयात हैं पहले जिनमें 12 चीज़ों का जिक्र आया है, और उसके बाद एक रिजल्ट उससे निकला कि जब ये हो जाएगा उस वक़्त इंसान जानेगा कि वो क्या लेकर आया है, उस वक़्त उसको पता चलेगा। इसी तरह अब ये सितारों की और रात की और सुबह की कसम खा के अल्लाह ताला ने एक बात बयान फरमाई है। तो ये सेकंड पोर्शन इस सूरत का, सेकंड पार्ट कह सकते हैं कि इसी तरह फिर ये कसमें खा के, और ये बहुत बड़ी कसम है, क्योंकि जो खाने वाला है वो कितना बड़ा है, और जिन चीज़ों की कसम खाई जा रही है वो देखें कि वो चीज़ें इटसेल्फ ज़मीन के ऊपर रात और दिन का आना जाना एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, एक बहुत बड़ी तब्दीली है, चेंज है जो वाकई होती है, तो रात और दिन पैदा होते हैं। अल्लाह ताला उनकी कसम खा के फरमा रहे हैं, इन्नहु लकौलु रसूलिन करीम, बेशक ये कौल, ये कौल से मुराद क्या है, ये कुरान एक रसूल करीम, एक मुअज्जज मैसेंजर का है। पहले तो आप सिर्फ इन कसमों के ऊपर थोड़ा सा एक और बात करना चाहूंगी, एक रात की जब कसम खाई गई ना कि जब वो रुखसत हो रही है, रात अब जा रही है, और सुबह इदा तनफ्फस, कितनी खूबसूरत बात की गई ना, सुबह जब वो सांस लेती है, यानी सुबह होती है और वो सांस लेती है, उसका सांस लेना क्या है, जैसे सांस किस चीज़ की अलामत होती है, लाइफ की ना, जिंदगी की, तो सुबह होती है और जिंदगी शुरू हो जाती है, चहल पहल हर तरफ, चरिंद परिंद भी निकल आए, आप देखिए इंसान भी निकल आए, हर एक अपने कामों पे जा रहा है, एक लाइफ नजर आने लगती है। रात को ऐसे लगता है सारी लाइफ जैसे बिल्कुल दुबक गई है, जैसे हर चीज खामोश हो गई है, सुबह है तो जैसे जिंदगी शुरू हुई, लाइफ। तो ये एक डिपिक्ट भी करता है इस चीज़ को कि देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले तकरीबन 600 साल तक कोई पैगंबर नहीं आए ईसा अलैहि सलाम के बाद, और ईसा अलैहि सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान तकरीबन 600 ईयर्स का फासला है जिसमें कोई पैगंबर नहीं आया दुनिया में। उस दौरान में क्या है, सिर्फ सितारे टिमटिमा रहे हैं, तारे हैं, तारों की रोशनी कम होती है ना, जैसे जाहिर है जैसे सूरज की रोशनी वैसी तो नहीं है ना तारों की, तो तारे टिमटिमा रहे हैं, वो कहीं कहीं हिदायत के चिराग रह गए हैं जो जल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाते हैं, हिदायत का सूरज तलू होता है, सुबह ने सांस ली, जब सुबह रोशन हो गई तो तारे अब बुझ गए, तारों की रोशनी देखिए मांद पड़ जाती ना जब सुबह होती है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो वो सारे जो पिछले अफकार और पिछले पैगंबरों की बातें और जो उनकी वो रह गई थी, उनके रिमेन्स जो जो उनकी तालीमात के रह गए थे, वो सब अब बुझ गए, अब सूरज निकल आया और सूरज ने हर चीज़ को रोशन कर दिया, अब हिदायत वाज़े होके सामने आ गई है, अब हर चीज़ क्लियर हो गई है, समझाई बात। और ये वो सूरज है, वो सितारे तो मांद पड़ गए थे ना सूरज के निकलने से, लेकिन अब ये सूरज मांद नहीं पड़ेगा, वो सितारे तो उनकी रोशनी खत्म हो गई अब क्योंकि सूरज निकल आया, लेकिन अब इस सूरज को रहना है, ये तालीमात अब रहेंगी। समझ आई बात? तो कितनी खूबसूरत उसके साथ ताबीर की गई ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से एक नई सुबह रोशन हुई, नया दौर शुरू हुआ। और इसी तरह आज भी जो अंधेरे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही लेकर आए थे ना, आज भी जो अंधेरे हैं वो जो वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं उसी के जरिए रोशनी हो सकती है, जिंदगियों में भी, माशरों में भी और सोसाइटीज में, कहीं पे भी। अंधेरों को दूर करना है तो उसका तरीका यही है कि इसे हिदायत के सूरज को रोशन किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीमात लेकर आए उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, उससे रोशनियाँ होंगी और इंडिविजुअल इनफरादी जिंदगियों में भी। और जिंदगी में अंधेरे हैं तो दिल को रोशन करना चाहते हैं ना, तो ये तरीका। तो इन्नहु लकौलु रसूलिन करीम, बेशक ये एक मुअज्जज़ पैगंबर का कॉल है, कहना है। ये मतलब नहीं है इसका कि ये पैगंबर का ही कलाम है। पैगंबर किसको कहते हैं? पैगाम बर, मैसेंजर। मैसेंजर किसको कहते हैं? जो किसी और का मैसेज लेकर आता है और आगे कन्वे करता है ना। तो रसूल वही होता है ना, रसूल जो पैगाम लाने वाला। इसका मतलब इंग्लिश में आपको आराम से इसका मतलब समझ आ जाता है, मैसेंजर, जो मैसेज लाने वाला। तो यहाँ पे मुराद कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जिब्रील भी कहते हैं, जिब्राइल भी कहते हैं, दोनों सही हैं। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो इज्जत वाले मैसेंजर हैं, वो ये लेकर आए हैं कलाम। यानी इतनी कस्में खाने के बाद अल्लाह ताला ने ये बात बयान फरमाई है कि ये नहीं कि वो कोई अपनी तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात कर रहे हैं या जिब्राइल अलैहिस्सलाम कोई अपनी तरफ से ही बात कर रहे हैं, नहीं, बल्कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आए। पैगंबर जिसने पैगाम दिया होता है उसकी बात ही लेके आगे कन्वे करता है। क्योंकि मक्का वाले ये बात कहते थे ना कि इसने फलां का गुलाम था उससे सीख लिया, इसने फलां यहूदी से सीख लिया, इसने फलां से पढ़ लिया, ये सब खुद ही बना रहा है, ये काहिन है, ये फलां है, ये शायर है, ये जादूगर है। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया नहीं, ये किसी इंसान की लिखा हुआ कलाम नहीं है, बल्कि ये जिब्राइल जो एक बहुत इज्जत वाले फरिश्ते हैं वो पैगाम लेकर आए हैं। तंजीलुम मिन रब्बि रहीम नज़ला बिही रूहुल अमीन, ये आता है ना, दी कुव्वतिन, जो बहुत कुव्वत वाले हैं। ये फरिश्ता कैसा है? जो इंतहाई ताकतवर फरिश्ता है। और इंदा दिल अर्श मकीन, अर्श वाले के नज़दीक बहुत बड़े मर्तबे वाला है ये फरिश्ता। यानी ये कोई मामूली बात नहीं है जिब्राईल अलैहिस्सलाम का आना, ये इंतहाई ताकतवर फरिश्ते हैं। और इनकी ताकत का आप इससे सोचें कि इब्ने अब्बास का कॉल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा। अच्छा, वो आगे उस बात पे मैं आपको बताती हूँ जो आगे आएगी इंशाल्लाह। सिर्फ इसमें इतनी बात समझ लें कि ये इतने ज़्यादा ताकतवर हैं कि इन्होंने अपने एक पर के ऊपर लूत अलैहिस्सलाम की जो पूरी बस्ती थी, पता है ना आपको, वो उस पूरी बस्ती को उठा के और पटख दिया था, उल्टा दिया था सिर्फ एक पर के ऊपर। और ये वो फरिश्ता है जिनकी चीख से कौम समूद के कलेजे फट गए थे। इसे अंदाज़ा लगाया ना कि कितने कवि हैं, कितने ताकतवर हैं। इनका जिक्र सूरह नजम में भी आता है ना, अल्लामा शदीदुल कुवा दू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफुकिल आला थुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना फऔहा इला अब्दिही मा औहा। तो वहाँ पे भी आता है कि एक फरिश्ता इनको तालीम देता है जो बड़ा ताकतवर है, बड़ा कवि है, और जो असली सूरत में اپنی اصلی صورت میں آسمان کے بلند کناروں پر ظاہر ہوا تھا، پھر وہ نزدیک آیا اور بہت قریب آیا، پھر دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم، پھر جو وہی اللہ نے اپنے بندے پر نازل کرنی چاہی وہ نازل فرمائی۔ تو یہ وہاں پہ بھی اللہ کے ہاں بھی یہ بڑے مضبوط فرشتے سمجھے جاتے ہیں، اور مطاعن ثم امین، ان کا کہنا وہاں مانا جاتا ہے، یعنی یہ ان کا کہنا آسمانوں پہ مانا جاتا ہے، یہ اتنے زیادہ طاقتور فرشتے ہیں، ان کو وہاں پہ بھی وہ مقام حاصل ہے کہ تمام فرشتے ان کی بات سنتے ہیں، جو کہ یہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ دیکھ لیں جس فرشتے نے وحی لے کر آنی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے عزت والے فرشتے کو یہ کام دیا کہ وہ یہ کام کریں۔ یہ وحی کوئی ایسی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا کلام نہیں ہے، یہ کتنی بڑی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے دیکھے کس فرشتے کو چوز کیا جو قوم لوط کی بستیوں کو اکھاڑ کے اور بلیک سی کے کنارے سے وہاں سے اٹھایا اور اپنے بازو پہ اٹھا کے اوپر آسمانوں تک لے کر گئے کہ وہاں پہ فرشتے اس بستی کے مرغ وغیرہ کی مرغوں کی آواز سن رہے تھے، وہاں تک لے جا کے الٹایا۔ کتنے طاقتور ہوں گے وہ، قوم سمود پہ ایسی دھاڑ ماری کہ بیٹھے بیٹھے وہ مر گئے، اور ایک آن کی آن میں آسمان سے زمین پہ اتر آتے ہیں اور پلک جھپکنے میں زمین سے آسمان پہ چڑھ جاتے ہیں۔ سوچیں ذرا کہ کتنے طاقتور ہیں یہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا کہ یہ میرا کلام لے کر جائیں گے۔ کیونکہ دیکھیں جب کوئی بادشاہ اپنے کوئی خاص کام کرانا ہوتا ہے یا کوئی بہت اہم چیز ہوتی ہے تو اس کے لیے کس کو چوز کرتا ہے؟ کسی بہت اپنے ٹرسٹ وردی بندے کو، کسی بہت، جتنا بڑا کام ہوتا ہے اتنا ہی اعلیٰ بندے کو چوز کرتا ہے نا وہ، کہ یہ بندہ جائے گا اور یہ میرا کام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو بھیجنے کے لیے فرشتوں کے جو سردار ہیں اور جو اللہ کے نزدیک بہت بلند مرتبے میں ہیں ان کو چوز کیا، اور آپ یہ دیکھیں یہ ان کی بات اتنی سنی جاتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے نا تو جبرائیل علیہ السلام کی کہنے سے فرشتوں نے آسمانوں کے دروازے کھولے تھے اور جنت کے دربانوں نے جنت کے دروازے کھولے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو اطاعت سے یہی مراد ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو حکم کرتے ہیں فرشتے اس کو مانتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس مقرب فرشتوں کی ایک پوری جماعت، ایک پوری ٹیم ہے جن پہ ان کا حکم چلتا ہے، اور ان کی ساری بات جیسے یہ حکم دیتے ہیں ویسے مانی جاتی ہے۔ ثم امین، پھر وہ امانت دار بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے کو چوز کیا جو ٹرسٹ وردی ہے۔ امانت دار کیسے ہیں؟ کہ کوئی بھی آیت وہی جو آئی زمین پہ اس میں ذرا سی بھی کمی بیشی کہیں نہیں ہونے دی۔ امانت دار ہیں یعنی ایز اٹ از لے کر آئے، اللہ کی امانت کو ایز اٹ از پہنچایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، تاکہ کوئی یہ نہ سوچ لے کہ پتہ نہیں بھائی قرآن پاک جیسے یہ جو آیتیں ہیں کیا پتہ استغفر اللہ کو شیطان دماغ کے اندر ڈال سکتا ہے، پتہ نہیں اللہ کی طرف سے جب آئی ہو، یہ نہ ہو کہ بھائی جبرائیل علیہ السلام لا رہے ہو تو بیچ میں ہی شیطانوں وغیرہ نے اپنا کوئی بات ڈال دی ہو یا کیا۔ نہیں، وہ اتنے طاقتور فرشتے ہیں، کسی شیطان کی مجال نہیں، ان سے تو فرشتے ان کے آگے متی ہیں، تو یہ شیطان کا تو کسی کا زور ہی نہیں ہے کہ وہ ان کے آگے کھڑا ہو۔ اور پھر آپ دیکھیں قوت والے بھی اتنے زیادہ ہیں، اس کی قوت اتنی زیادہ ہو اس کے سامنے کوئی اور کوئی آ کے کیسے پھٹک سکتا۔ تو اس وحی کے لانے میں اور اس کے پہنچانے میں کہیں کوئی کمی نہیں ہوئی، کہیں کوئی ایڈیشن نہیں ہوئی، کہیں کوئی چینج نہیں آئی، بالکل جیسے انہوں نے لوح محفوظ سے لی اسی طرح لا کے پہنچائی۔ تو ہمیں بھی اس یقین کے ساتھ اس کتاب کو لینا ہے، اس کلام کو پڑھنا ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی یہ نہ سوچے اس میں کہیں کوئی شاید تبدیلی آئی ہو، اتنے سال گزرے ہیں یا اتنے سال گزرنے میں تو شک نہیں ہوتا، اس لیے کہ سب تواتر سے کنٹینیوٹی سے چلا آ رہا ہے اور ایک بندے کی بات نہیں ہے یہ، हजारों लाखों लोगों की बातें जिनके सीनों में भी थी, लिखी हुई भी थी, महफूज तो महफूज है। और जिस कलाम के बारे में अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया कि मैंने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है, और ऐसा फरिश्ता वहां से लेकर आया है कि आसमानों पे जिसकी बात सुनी जाती है, और वो बहुत इज्जत वाला है। अल्लाह ताला ने कद्र मंजिलत वाले फरिश्ते के जरिए इसको भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अल्लाह ताला किसी अमर की वही करना चाहता है, यानी कोई भी हुक्म अपना भेजना चाहता है, तो वही के साथ कलाम फरमाता है जिससे आसमानों में एक सख्त लर्जा पैदा हो जाता है। पता है जब अल्लाह ताला कोई हुक्म देते हैं तो आसमानों में लर्जा पैदा हो जाता है, क्योंकि आसमान वाले जितने फरिश्ते हैं ना, जब अल्लाह के हुक्म को सुनते हैं तो वो बेहोश हो जाते हैं और अल्लाह के सामने सजदे में गिर पड़ते हैं। फिर होश में आके सबसे पहले सार उठाने वाले जिब्राइल अलैहिस्सलाम होते हैं। अल्लाह ताला उनसे अपनी वही के साथ कलाम करता है। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम मलाइका की तरफ से गुजरते हैं, जिस आसमान की तरफ से गुजरते हैं उसके फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं हमारे मालिक ने क्या फरमाया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो कुछ फरमाया हक है, वो बुजुर्ग बरतर है। फिर सब मलाइका कहते हैं कि अल्लाह ने जो फरमाया हक है। इतनी दहशत है उनके ऊपर कि अल्लाह के हुक्म की, वो जानते हैं ना अल्लाह को, उन्होंने पहचाना है, हमारी तरह तो नहीं ना कि बेखौफ जिंदगियां। वो डरते हैं अल्लाह से, और फिर ये आप इससे अंदाजा लगाइए कि इब्ने अब्बास को कॉल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहि वसल्लम से फरमाया था कि मैं आपको उस शक्ल में देखना चाहता हूं जिस शक्ल में आप आसमान में होते। तो जिब्राइल अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों नहीं। जिब्राइल अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप किस जगह चाहते हैं कि वो सूरत मैं आपको दिखाऊं। फरमाया बतहा में। तो जिब्राइल अलैहि वसल्लम ने कहा वहां तो मैं नहीं समा सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मीना में। उन्होंने कहा वहां पे भी मैं नहीं समा सकता। फरमाया अराफात में। फरमाया इसमें भी मेरी वसत नहीं है। फरमाया हिरा में। उन्होंने कहा कि उसकी बुनियादी दीवारों में अगर मेरी गुंजाइश होगी। मैं अगर वक्त मुकर्रर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, अचानक अराफात के पहाड़ों से एक खनखनाहट की आवाज आई और बादलों की गरज जैसी आवाज के साथ जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबूदार हुए। उनका सर आसमान तक था और पांव जमीन में थे, और मशरिक से मगरिब तक सारी फिजा भरी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समा देख के बेहोश होकर गिर पड़े। रावी का बयान है कि इसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी सूरत बदल के आ गए, अपनी सूरत में आए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से चिमटा के कहा या मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खौफ ना करें, अगर आप इसराफील अलैहिस्सलाम को देख लें तो आपका क्या हाल हो कि उनका सर तो अर्श के नीचे और पांव सातवीं जमीन की हदों में है, अर्श उनके कंधों पे है, और इसके बावजूद अल्लाह के खौफ से वो कभी कभी इतना सिमट जाते हैं कि चिड़िया की तरह हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं वो इतने बड़े फरिश्ते हैं इसराफील अलैहिस्सलाम। और हमने पढ़ा था ना पहले कि कई फरिश्ते हैं वो इतने इतने बड़े हैं, उनके 6,000 पार हैं, इतने हैं। तो ये बहुत बड़े फरिश्ते हैं जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, बहुत ताकतवर हैं, बहुत बड़े मर्तबे वाले हैं, बहुत अमानतदार हैं, इनका कहना वहां पे माना जा रहा है। अब यहां तक ये पता चल गया कि जो लाने वाले हैं आसमान से जमीन तक वो कैसे हैं। अब आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, उनसे फिर आगे सहाबा तक गया ना, उनके ऊपर भी अल्लाह ताला ने गवाही दी वमा साहिबुकुम बिमजनून, और तुम्हारा साथी कोई मजनून नहीं है। यानी वो लोग कहते थे ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जुनून हो गया है। जुनून से मतलब दो बातें हैं कि या तो ये कि भाई दिमाग खराब हो गया, जुनूनी हो गए नऊज़ु बिल्ला, या फिर ये कि कोई इनके पर जिन का साया वगैरह हो गया। तो अल्लाह ताला ने गवाही दी कि तुम्हारा साथी यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तुम्हारे अंदर मौजूद रहे हैं, वो तो तुम्हारे सामने रहे हैं, वो मजनून नहीं है, तुम तो इनको अपने सामने देखते रहे हो। वलकद रआहु बिल उफुकिल मुबीन, और अलबत्ता तहकीक उसने देखा यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा हु उसको, उसको किसको, जिब्राइल अलैहि सलाम को, बिल उफुकिल मुबीन, उफुक मुबीन पे, किनारे पे, वाजे तौर पे, रोशन किनारे पे, जो आंख को वाजे नजर आता हो वहां पे देखा। अब ये किस लिए बताया गया, इसलिए कि हो सकता है कि कोई कभी ये कह दे कि क्या पता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात भी जिब्राइल अलैहि सलाम से हुई है कि नहीं हुई, क्या पता जो आके बताता था बातें वो कोई शैतान ही हो, क्या पता कोई कोई और ही बातें बताता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहि सलाम समझ लिया। आपने कौन सा जिब्राइल अलैहि सलाम को देखा था कि उनको पता हो कि यही है वो, है ना। एक बात हो सकती है कि कोई काफिर कोई दुश्मन आके बाद में ऐसी बात कर सकता है, तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अलैहि सलाम इंसानी शक्ल में तो आते ही थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उनकी मलकी शक्ल में भी, जो फरिश्ते की शक्ल है उसमें भी देखा हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचानते थे कि यही फरिश्ता मेरे पास आता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कैसे देखा था कि जब पहली वही उतरी थी उसके बाद काफी अरसे तक वही नहीं आई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा हिरा से उतर रहे थे, बड़े गमगीन थे कि ये वही का सिलसिला बंद हो गया कि आवाज आई आपको या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं देखा बाएं देखा आगे पीछे देखा कुछ भी नहीं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा आगे बढ़े फिर आवाज आई या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं बाएं आगे पीछे देखा कोई चीज नहीं, फिर आगे बढ़े तो तीसरी दफा जब आवाज आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं बाएं देखा और ऊपर आपकी निगाह गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो फरिश्ता जो मेरे पास हिरा में आया था, इसका मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचाना ना कि वो फरिश्ता जो मेरे पास हिरा में आया था वो, आपने फरमाया कि ऐसे था कि पूरा आसमान भर गया था उससे, पूरा आसमान भरा हुआ था। और ये सोचें कि जिब्राइल अलैहि सलाम के 600 पारे जिनमें से सिर्फ दो खोले हुए थे उन्होंने और उनसे पूरा आसमान ढका हुआ था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देख के बेहोश हो गए थे। और दूसरी दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहि सलाम को कहां देखा था, मेराज पे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे थे और वहां पे पहुंच के जब जिब्राइल अलैहि सलाम ने फरमाया कि इससे आगे मैं नहीं जा सकता, तो वहां पे इसका मतलब है वहां तक जिब्राइल अलैहि सलाम किसी और सूरत में थे, लेकिन वहां पे उस वक्त फिर जिब्राइल अलैहि सलाम अपनी असली सूरत में आ गए थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी थी। तो हमें यह बता दिया गया कि कोई ये नहीं कह सकता कि पता नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिससे सुना तो सही भी सुना कि नहीं, जो पैगाम लेकर आया था वो वही था या नहीं, या किसी और दफा कोई और पैगाम लेकर आया नहीं। हमें ये बताना, ये हमने जाहिर है ना, तो हमने जिब्राइल अलैहि सलाम को देखना है ना देख सकते हैं, मगर हमें क्यों बताया जा रहा है ना, खुद ही सोचें, ताकि आपको पता चल जाए कि ये चेन जो है ना, चेन्स चलती है ना पीछे, जैसे हदीस की भी चेन होती है, इसने इससे सुना, इसने इससे सुना, इसने इससे सुना और उसने जाके फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। ये इस तरह अगर आप बुखारी में देखें, आप मुस्लिम में देखें, तो इस तरह चेन के चेन्स आ रही होती, तो चेन पीछे तक पहुंचनी चाहिए तभी उस हदीस को सही समझा जाता है। अगर कहीं चेन का लिंक मिसिंग हो कि फलां जो रावी है वो तो इससे मिला ही नहीं, उसने तो इसको कभी देखा ही नहीं, तो उसे कैसे सुनी होगी हदीस, तो उसको उस हदीस को नहीं लिया जाता, फिर लिंक मिसिंग है बीच में से। तो ये चेन पीछे तक जा रही है जिब्राइल अलैहि सलाम तक, कोई ये ना समझे कि इसका कोई लिंक मिसिंग है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहि सलाम को देखा है, उनसे मुलाकात की है, उनसे वही ली है, अल्लाह ताला ने यहां पे वही की हक्कानियत बयान की है। और फिर कभी कोई ये कह सकता है कि पता नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी बात बयान की भी कि नहीं की। वमा हुआ अलल गैबी बिदनीन, और वो गैब पर बखील नहीं है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी पहुंचाया, वो गैब से मुराद यहां पे क्या है, कुरान, कुरान गैब ही है ना, उसके बाद हमारे तक पहुंचा, गैब में था, तो वो गैब पे बखील नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस कुरान को पहुंचाने में कोई बुखल किया हो, ये कुछ बताया और कहीं कोई डंडी मार दी नाउजुबिल्ला, या कुछ नहीं बताया, कुछ छुपा लिया, नहीं, उन्होंने सब कुछ पहुंचा दिया। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में फरमाया था ना कि लोगों मैंने तुम्हें पहुंचा दिया, लोगों ने गवाही दी कि आपने हमें पहुंचा दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन दफा फरमाया था ना, अल्लाहुम अशहद अल्लाहुम अशहद अल्लाहुम अशहद, अल्लाह ताला तू गवाह रहना कि मैंने पहुंचा दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात छुपाई नहीं, कोई बात ऐसा नहीं कि इनकम्प्लीट हो, पहुंचाने से रह गई हो, ये जो लोग कहते हैं ना बाद में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ख्वाब में आए और उन्होंने मुझे ये वजीफा बता दिया, ये पढ़ो, ये ऐसे करो, ऐसे करो, गलत बात है ये। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन पूरा का पूरा पहुंचा दी, फिर वो दूसरों को बताते फिरते हैं, अच्छा हमें ये पता चली बात क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ख्वाब में आके बताई थी। तो अल्लाह माफ करे कि आप ये कहना चाहते कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए तो पूरी बात पहुंचा के नहीं गए कि आप उनको ख्वाब में आके बातें बतानी पड़ रही। लोग इस तरह घड़ घड़ के बातें, और फिर वो उसके ऊपर किताबों में भी लिख देते हैं, फिर आप पढ़ पढ़ के, अच्छा जी देखो ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आके इनको बता के गए, और तो उस चीज की कोई सनद ही नहीं होती, ना वो हदीस में होती है ना वो किसी और से, तो फिर आप कहां से वो उसकी दलील लेकर आए? तो कहते हैं हमें ख्वाब में आके बता गए थे। तो ये एक बोहतान ना लगाएं। अल्लाह ताला ने गवाही दी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई चीज नहीं छुपाई, पूरा का पूरा दीन पहुंचा दिया लोगों तक। जो भी हमारे नफे की बात थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे फायदे की हर बात बता दी है, कोई बात बताने से नहीं रही, याद रखें। जब आप कहते हैं ना बिदतें ईजाद ही इसी तरह होती हैं, क्या कोई बात रह गई थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौज़ बिल्ला कोई छुपा ली थी, या कोई आपको आज पता चला कि ये करना चाहिए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताना भूल गए थे, नौज़ बिल्ला। तो आज आप ये चीजें ईजाद कर करके नई से नई चीजें बना रहे? नहीं, उन्होंने तो सब कुछ बयान फरमा दिया, सब कुछ बता दिया, वाजे कर दिया, दीन को खोल के बयान कर दिया, कोई चीज याद रखे नहीं रह गई। इसलिए बिदते मत ईजाद करो, कोई चीज अगर हमारे फायदे की होती तो वो बता के जाते। अब आपको जरूरत नहीं है कि आप उनसे भी आगे बढ़ के चीजें निकाल निकाल के और वो करें और कहें कि इसके अंदर बहुत बड़ी नेकी है, बड़ा सवाब का काम है ये। और बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ खुद पहुंचाया बल्कि अपनी उम्मत को भी तरगीब दी कि आगे पहुंचाओ मेरे से, चाहे एक आयत ही क्यों ना हो, आगे पहुंचाओ। इसके बाद हम सबके ऊपर फर्ज बनता है कि एक आयत भी हम सीख लें अगर, तो हम आगे पहुंचाएं, आगे बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अल्लाह ताला उसको तरोताजा रखे जो मुझसे सुने और उसको आगे पहुंचाए बात को, उसके लिए दुआ की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो वो दुआ उन सब को लगती है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को आगे पहुंचाएं। तो ये हम तो आज हमारा तो ये हाल है ना, हम पता नहीं किन कामों में लगे हुए, हमने क्या पहुंचानी है और क्या सीखनी है, हमारे पास तो खुद सीखने का वक्त नहीं है, कहां हम दूसरों को पहुंचाएंगे। हम ये मौसीकी और गाने बजाने से निकलेंगे और इधर उधर वक्त जाया करने से निकलेंगे तो फिर हम कहीं कुरान को एंजॉय भी कर सकते हैं और इसको सीख भी सकते हैं। जब दिमाग के अंदर ये 2+2 इतने डॉलर कमा लूं और इतने कर लूं तो फिर वो कहां कुरान की बारीकियों को समझेंगे। हमने इस कुरान की वो कदर नहीं की। ये कुरान तो वो है जो पहाड़ों पर उतरे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, ये कुरान कहता है। ये अगर अल्लाह इसको इस कलाम को पहाड़ पर उतारता ना तो वो इसको बर्दाश्त ना कर सकता। फिर भी कितनी बदकिस्मती है कि हम इस कलाम को छोड़ के और दूसरी चीजों को सीखते हैं, ऐसे इतने बड़े कलाम को। और कितनी बदकिस्मती है कि करोड़ों मुसलमानों में से कुछ चंद एक ही हैं जो कुरान का एक एक लफ्ज जानते हो। आखिर सबके सामने तो कुरान पढ़ा जाए तो उनको कुछ पता नहीं है, कुरान सिर्फ फाल निकालने के लिए रह गया या फातिहा खानी करने के लिए, या सुबह उठती है तो सूरह यासीन पढ़ ले ताकि हमारे घर में बरकत हो जाए, बस ठीक है। बेसमझे पढ़ना, उससे भी सवाब मिलेगा, मगर ये तो समझ के पढ़ने के लिए आया ना, ये तो जिंदगियां बदलने के लिए आया, ये तो इसलिए आया ताकि हम इसको अपना रहनुमा, इसको अपना इमाम बनाएं। लेकिन जब हमारे दिल देखें दुनिया की तरफ इतने लग गए हैं ना, अब दुनिया इतनी समा गई है हमारे अंदर, हमें हमारे दिलों का वो हाल हो गया है कि इतने ये मैले हो गए हैं, आज अंधे हो गए हैं दुनिया की मोहब्बत में, कि अगर कुरान सुनाया भी जाए तो हमारे पर वो असर होता ही नहीं। आज तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सामने बैठ के सुना देंगे तो जो जो दिल बिल्कुल अंधे हो चुके हों दुनिया की मोहब्बत में उनको असर नहीं होता। अबू जहल और अबू लहब के सामने भी तो उस पढ़ के सुनाया जाता था, 13 साल में कितने लोग मुसलमान हो गए थे मक्का में, क्योंकि अंधे हुए हुए थे वो दुनिया के पीछे। तो ये कुरान तो हमारी जहालत को दूर करने के लिए आया, हमें हमारी जिंदगी का मकसद बताने के लिए आया, हमारे खालिक का पता बताने के लिए आया। मुझे बताएं कौन सी यूनिवर्सिटी है, कोई हार्वर्ड ले लें, प्रिंसटन ले लें, कोई दुनिया की यूनिवर्सिटी ले लें बेहतरीन, जो आपको ये बता दे कि हमारा बनाने वाला कौन है, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, मर के हमने कहाँ जाना है और हमारे साथ क्या होना है, हमारा शुरू और हमारा एंड बता दे कोई एक, मुझे यूनिवर्सिटी बता दे जो आपको इस चीज का पता बता दे। ये कुरान बताता है हमें, ये आसमान से उतरा हुआ इल्म है, जो इसको समझता है, इसके साथ जिंदगी गुजारता है, वो उसको अल्लाह ताला ने उसको पता है क्या फरमाया कि वो है जो इल्म वाला है। देखिए कुरान में आता है ना कि अंधा और इल्म वाला बराबर नहीं होते, तो कहना तो ये चाहिए था कि इल्म वाला और बेइल्म बराबर नहीं होते। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अंधा और इल्म वाला बराबर नहीं होते। देख रहे हैं कंपैरिजन, इसका मतलब है कि अल्लाह ताला के नजदीक देखने वाला सिर्फ वही है जो इल्म वाला है, बाकी सारा जहान अंधा है। चाहे वो आइंस्टाइन है, चाहे वो न्यूटन है, चाहे आप कोई डॉक्टर हैं, चाहे कोई इंजीनियर हैं, चाहे आप कोई कोई कितनी बड़ी माहिर हैं कुकिंग की, चाहे आप स्टिचिंग की, चाहे आप कोई घर की डेकोरेशन की, कमन हुआ आमा, ऐसे ही है जैसे अंधा हो। कितने गम की बात है ना, जिन्होंने 16-16 साल लगा कर डिग्रियां ली, वो कुरान की एक आयत का तर्जुमा भी ना जाने। अल्लाह ताला कहते हैं ये अंधा है, देखने वाला वो है सिर्फ जो कुरान को, कुरान के साथ जिसकी आंखें खुली हों। कुरान नहीं है जिसके पास, उसकी आंखें ही नहीं है। तो सारे मुसलमानों पे फर्ज है कि वो कुरान को कम अज कम इतना तो सीखे कि उनको ये पता चल जाए कि ये कहता क्या है। सब मुसलमानों पे उलमा बनना फर्ज नहीं है, ना यहां पे कोई आपको आलिम बनाया जा रहा है, मगर समझना सबके ऊपर फर्ज है। कुरान जब कह रहा है या अय्युहल लदीना आमनू, तो किसको बुला रहा है बताएं, किसको बुला रहा है वो? आप तो कहते हैं हमारे तो फर्ज ही नहीं है कुरान पढ़ना, वो उधर कुरान पुकार पुकार के कह रहा है या अय्युहल लदीना आमनू, ये किसी को भी पुकारा होगा, हमें क्या पता। हाँ? तो वो आपको ही तो कह रहा है, आपको ही तो पुकार रहा है और आपको पता ही नहीं। तो हादा बलागुल निन्नास, ये पैगाम है आगे पहुंचाने के लिए, पहले खुद सीखें फिर आगे पहुंचाएं। ये शेल्फ में रखने के लिए नहीं है, ये कुरान खानियां सिर्फ करने के लिए नहीं है। और सबसे पहले हमारा ये होना चाहिए कि अच्छा, अगर हम खुद नहीं किसी को सिखा सकते, कम से कम दावत ही दे दें, किसी को बता ही दें कि इधर को आ जाओ आप। और खास तौर पे मुसलमानों के, जैसे हमने पहले भी बात की, पिछली आबासा में भी बात की थी सूरा में, कि सबसे पहले अपने मुसलमानों को, क्योंकि देखें अगर आपकी माँ आपके घर में भूखी बैठी हुई है, आप उसको पहले खाना देंगे या हमसाई की अम्मी को देंगे? हाँ, अगर किसी एक की चॉइस हो, दोनों को देना चाहिए, ठीक है उसको भी खाना दे, लेकिन पहले हक किसका है? पहले अपनी माँ को देंगी ना। तो इस उम्मत को इस्लाम पे बाकी रखने के लिए हमें कोशिश करनी है, आज कोशिश करें। आज तो ये हाल हो गया, कहीं कहीं नमाज रोजा बस नजर आता है, मगर जिंदगियां तो जो नमाज रोजा करने वाले हैं उनकी भी जिंदगियां कुरान वाली नहीं है, कुरान से खाली है। तो कहां वो जो बेनमाजी हैं और बेरोजेदार हैं और ये हैं, वो तो बहुत भरे में बेशुमार हैं। तो अगर नहीं कुरान सिखा सकते, इसकी दावत तो दें, वो तो हर एक की जिम्मेदारी है। इससे नसीहत तो ले लें, वो तो हर एक की जिम्मेदारी है। इसकी तरफ तो आए, ये इतना प्यारा कलाम है। अल्लाह ताला ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ तुम्हें बता दिया, उन्होंने कोई बुखल नहीं किया, कुछ नहीं छुपाया। और उन्होंने ये नहीं सोचा कि कोई देहाती है, कि कोई शहरी है, बद्दू भी आते थे वो भी सीखते थे, मालदार भी आते थे, फकीर भी आते थे, गुलाम भी आते थे, रईस भी आते थे, वे मर्द भी थे, औरतें भी थीं, पढ़े लिखे भी थे, अनपढ़ भी थे, सबको सिखाया, सबको बताया, किसी में फर्क नहीं किया। वो लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जाहिल थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद वो खुद उस्ताद बन गए, लोगों को सिखाने वाले बन गए। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जो शख्स भी ये कहता है कि जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल फरमाया, इसमें से आपने कुछ छुपा लिया हो, तो वो झूठा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि کہ اے پیغمبر جو کچھ بھی آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا, آپ نے بخل نہیں کیا. اب ہم بخل کر رہے ہیں کہ ہم اپنے تک لے کے بیٹھے رہیں, آگے پہنچائیں. وما ہوا بقول شیطان الرجیم, اور نہیں ہے یہ قول شیطان الرجیم کا, یہ کسی شیطان کا قول نہیں ہے, کسی شیطان کی پھوکی ہوئی بات نہیں ہے کہ شیطان نے آ کے دل میں ڈال دی ہو. کتنی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے لیے گواہیاں دی ہیں نا. اب جب یہ قرآن اتر رہا تھا تو سوچیں کہ اتنا بڑا پہرا تھا اس کے لیے, اتنا پروٹوکول تھا اس کے لیے کہ بالکل جیسے آپ دیکھیں نا کوئی صدر کی سواری جا رہی ہوتی تو پوری ٹریفک بند کر دیتے ہیں نا. تو جب یہ قرآن اتر رہا تھا نا تو یہ شیطان جو تھے یہ اوپر یہ جا نہیں سکتے تھے, جا کے اوپر باتیں سنیں, کوئی چیز لے نہیں سکتے تھے. آپ نے سورہ جن میں پڑھ لیا نا کہ کس طرح جیسے کرفیو لگ جاتا ہے, کرفیو لگ گیا تھا, بالکل ان کو اجازت نہیں تھی اوپر جا جا کے باتیں سننے کی, ان کو مارا جاتا تھا, وہاں سے بھگایا جاتا تھا. تو ہوش میں آؤ, یہ کسی شیطان کی بات نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار, آپ کی شخصیت, آپ کے اخلاق اس پہ گواہ ہیں کہ وہ ایسے ہیں ہی نہیں کہ کسی کاہن نے یہ کلام ان کو سکھا دیا ہو یا کسی کوئی ایسی شیطان نے آ کے, کسی جن نے آ کے ان کو کوئی بات کر دی ہو. نہیں, وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن بھی کہتے تھے نا. ولید بن مغیرہ نے یہ آ کے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں, میں کاہنوں کو جانتا ہوں, میں نے ان کو کلام سنا ہوا ہے, مجھے پتا یہ کاہن کا کلام نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کردار ہی ایسا تھا کہ وہ اس طرح کی چیز کے قریب بھی, ملتی جلتی بھی چیز ایسے سے نہیں تھی. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام کیا. دیکھ لیں, آپ کو پورا بتایا گیا کہ کون سا فرشتہ پھر کس نبی کے پاس آیا, پھر وہ نبی کیسا, وہ نہ مجنون ہے نہ وہ یہ شیطان کا قول ہے, وہ نبی اس فرشتے سے ملا بھی تھا, اس کو دیکھا بھی تھا, اور وہ نبی ہر بات ایز اٹ از پہنچانے والا تھا, وہ اس میں بخیل بھی نہیں تھا. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, پھر تم بتاؤ اب تم کدھر جا رہے ہو, اس کلام کو چھوڑ کے پھر تم بھاگتے ہو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام کیا, تم اس کو چھوڑتے ہو, اتنا پیارا کلام چھوڑ کے تم جاتے ہو. کتنا خوبصورت انداز ہے نا, کہاں جا رہے ہو اس کو چھوڑ کے, کیوں اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار رہے ہو, اس ہیرے کو چھوڑ رہے ہو, اس کی قدر پہچانو. علمت نفس ما احضرت, یہ اس دن کام آنے والی چیز ہے, یہ تمہیں ہدایت پر لائے گا, یہ تمہیں راہ دکھائے گا, یہ جنت کا راستہ بتائے گا. تو تم میرے بندے تم کہاں جا رہے ہو. اللہ تعالیٰ دیکھیں, سبحان اللہ, اللہ غنی ہے. تم کفر کرو چاہے شکر کرو, اللہ بے نیاز ہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ اس کی طرف آئیں یا نہ آئیں, آپ اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں, اللہ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑنا. پھر بھی وہ رب چونکہ کریم ہے, یہ ہے اس کی غفاری اور یہ ہے اس کی رحمت کہ وہ پھر اپنے بندے کو بلاتا ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, کدھر جا رہے ہو میرے بندے. کاش آپ اس کی حلاوت کو سمجھ سکیں, میری بندی تو کہاں جا رہی ہے, میں نے تیری نجات کے لیے کہ تو پاس ہو جائے اس دن اس کلام کو اتارا, کہ تو جہنم کی آگ سے بچ جائے, تو عذابوں سے نجات پا جائے, تو دنیا کی زندگی سکھی گزار لے, میں نے تیرے لیے اس قدر اہتمام کیا, اس کی پھر حفاظت کا بھی انتظام کیا, 21ویں صدی میں آ کے تجھ تک یہ پہنچایا حفاظت کے ساتھ, اور تو اس سے بھاگ رہی ہے. اور تم اس کو کہتے ہو کہ میرے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ کا درد سمجھے. ماں جو بچے سے کہتی ہے نا, میرے بچے تم کہاں جا رہے ہو اپنی ماں کو چھوڑ کے. اب یہ الفاظ ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, آپ ایسے پڑھ کے بھی نکل سکتے ہیں اور آپ اس کے درد کو بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ اس درد کی کوئی ترجمانی کر سکتا ہے. جب ماں بچے کو سوچیں کہے کہ میرے بچے تم کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کے, آپ اس درد کو محسوس کریں, کیونکہ ماں بچے کو بچانا چاہتی ہے, روکنا چاہتی ہے, اور بچہ ہاتھوں سے نکلے جا رہا ہے. تو ماں درد کے ساتھ کہتی ہے کہ تم بیٹا تم کہاں جا رہے ہو. اللہ تعالیٰ اس طرح فرما رہے ہیں, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, کہاں جا رہے ہو تم, किसके पास जाओगे, कहां पनाह पाओगे? मुझे छोड़ के भी कोई जगह है? कोई जमीन है जो तुम्हारा बोझ उठाएगी? कोई आसमान है जो तुम्हें छत देगा? क्यों जा रहे हो मुझे छोड़ के दीवाने? इंसान सोचता है वो दुनिया में जाके अल्लाह से छुटकारा पाके, इस कुरान से दूर हो के। देखिए, कुरान की तरफ तो वही आएगा ना जो अल्लाह से मोहब्बत करता होगा, उसको ही उसकी बातें अच्छी लगेंगी ना। तो जो इससे भागता है वो किससे भाग रहा है दरअसल? दूर अल्लाह से भाग रहा है। तो अल्लाह तआला की पुकार है, क्यों नहीं सुनना चाहते? क्यों नहीं आना चाहते? इसको छोड़ के तुम अपने कामों में मशगूल हो, इसको छोड़ के तुम्हें दुनिया के धंधे हैं, इसको छोड़ के तुम किधर गुम हो? कहां से तुम्हें कोई खुशी मिल सकती है इसको छोड़ के? हालांकि सुकून तो इसमें, अला अला ऐलान सुनो, जरूरी ऐलान है, मुतवज्जे किया जा रहा है, इधर सुनो, गौर से सुनो, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह का जिक्र ही तो है जिससे दिलों को सुकून मिलता है। नाचो गाओ कूदो दौड़ो जो मर्जी कर लो, तुम्हें करार नहीं मिलेगा जब तक अल्लाह की तरफ नहीं लौटोगे, कभी नहीं तुम्हें चैन आएगा। देखें, कोई अगर रास्ता भूल जाए, कोई मुसाफिर अपनी मंजिल से भटक गया हो, कहीं और निकल गया हो, तो वो बेकरार रहता है। तो जो अल्लाह का रास्ता भूल जाए ना, जो अल्लाह का रास्ता छोड़ के कहीं और निकल गया ना, वो बेकरार ही रहेगा। उसको कायनात की कोई चीज करार नहीं दे सकती, चाहे आपको सोने पे डॉलरों पे उसको लिटा दें। वो आपको अगर अच्छे कपड़े पहने हुए मिलता है, सोने जवरात पहने हुए मिलता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाता हुआ मिलता है, मगर उसके अंदर अंधेरा होता है, उसके अंदर वीरानी है, क्योंकि वो अपने रब से नहीं जुड़ा हुआ। ये कुरान जो है ना, रब से जोड़ता है आपको। जो वहां से ना जुड़े उसको कभी चैन की जिंदगी नहीं मिलेगी, कभी सुकून नहीं मिलेगा। मासूम बच्चे को देख ले, मां को छोड़ के कभी वो चैन नहीं पाता, जब मां की गोद में आता है तभी उसको चैन आता है। तो अल्लाह को छोड़ के, चाहे कोई जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे कोई मुस्लिम है, गैर मुस्लिम, कोई भी है, अगर अल्लाह को छोड़ते हैं ना, जिसने अल्लाह को छोड़ा, वो तो काबिले रहम है। जिसको अल्लाह ना मिला उसको चैन नहीं आएगा। आप गरीब को देख के रहम खाते हैं कि इनके पास खाने को नहीं है, इनके पास पहनने को नहीं है। असल काबिले रहम वो है जिसको अल्लाह नहीं मिला, जिसके पास अल्लाह नहीं है, वो तो बेसकून है। तो इतने दुनिया की दौड़ में गुम हो गए कि अपने रब से ही दूर हो गए, उन रास्तों को ही छोड़ दिया जो अल्लाह की तरफ जाते थे, उस कलाम को ही दूर कर दिया जो उस तक पहुंचा दे। दिल में ये चाहत ही नहीं है कि मैंने अल्लाह की तरफ जाना है। हाय हाय, फिर भी यही होता ना, औलाद देखें, जैसे अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को भी तशबीह दी माँ की मोहब्बत से। हालांकि क्या, माँ की मोहब्बत तो फिर भी बहुत थोड़ी सी है, अल्लाह की मोहब्बत तो जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला, 70 का तो सिर्फ लफ्ज है, इसलिए एग्जैजुरेशन बताने के लिए, कि बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। तो देखें, ये दुनिया के माँ बाप भी, माँ बाप जो होते हैं ना, वो नहीं भूलते, औलाद भूल जाती है ना, ऐसा ही है ना। तो अल्लाह ने हमें अपने हाथों से बनाया, वो नहीं भूलता, हम भूल जाते हैं। उसने दरवाजे नहीं बंद किए, वो कह रहा है फाइन तज़हबून, तुम क्यों छोड़ के जा रहे हो मुझे? उसने नहीं दरवाजे बंद किए, हमने रास्ते बदल दिए, हमने उन रास्तों पे चलना छोड़ दिया। बच्चा घर से निकल जाए ना, बच्चे को परवाह नहीं होती अपने लौटने की। मां बाप हैं जो रात को भी दरवाजा खुला रखते हैं कि कभी तो वापस आएगा। तो हमें इतना दर्द नहीं है, आपको शायद इतनी परवाह भी ना हो। आपने कभी कुरान शायद कभी खोल के भी ना देखा हो कि कहीं कुरान में मेरा रब कह रहा है ऐन तज़हबून, किधर चले गए, किधर जाते हो? 20, 30, 40, 50 साल की जिंदगियां गुजार के अब आके हमने ये पढ़ा ऐन तज़हबून। अल्लाह ने तो 1400 साल पहले ये फरमा दिया था। ये कलाम कब से हमारे घरों में था ना,
हमने कभी नहीं खोल के देखा कि मेरा रब मुझे क्या कह रहा है, कि मेरे से क्यों दूर जाते हो। इस कदर मैंने एहतमाम किया तुम तक अपना कलाम पहुंचाया, और तुम उन दुनिया की चीजों में गुम हो जो बेवफाएं चली जाने वाली हैं। तुम मुझे छोड़ छोड़ के दूर भागते हो, दामन बचाते हो मुझसे, बचना चाहते हो, बचना चाहते हो इस कुरान को सुनने से, इस मेरे कलाम को सुनने से। मेरी बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगती, मेरी बातों को सुनने से बचते हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमने तेरा हक नहीं पहचाना, अल्लाह हमने तेरी कदर नहीं पहचानी जैसे तेरी कदर करनी चाहिए थी। तू तो गफूर रहीम है, हम ही बेवफा हैं, हम ही गंदे हैं, तू तो पाक जात है, हमने अपने ऊपर खुद जुल्म किया। ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐसे करीम रब को भी छोड़ के फिर लोग भागे फिर रहे हैं, फिर इनको बुलाते हैं आओ 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 कुछ सुन लो, कहते नहीं हम नहीं आ सकते, आज हमारी अपॉइंटमेंट है, आज हमारे हमारा ये काम है, आज हमारी जॉब है, आज हमारा फलां है, कहाँ हमारे पास इतना वक्त है, ये तो आपका फारे लोगों का धंधा है। इन हुआ लिल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, नहीं है मगर ये एक नसीहत है जहान वालों के लिए। तुम इससे भाग रहे हो, ये तो एक नसीहत है सब के लिए, खैर ख्वाही है। ये कलाम दिलों को पिघला देने वाली नसीहत है, ये इंसानों को आग से बचाने के लिए, जिंदगियों की इसलाह करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए गाइडलाइन है इसमें। तो और ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, ये तो सारे जहान वालों के लिए है। लिमन शाह अमिन कुम अस्तकीम, फिर तुम में से जो चाहे ठीक है, जो सीधा चलना चाहता है, सीधे रास्ते पर आना चाहता है, तुम में से आ जाए। ये सीधा रास्ता है, ये सीधा रास्ता बता रहा है, ये नसीहत किसके लिए, जो सीधे रास्ते पे चलना चाहे। लिमन शाह अमिन कुम अस्तकीम, जो तुम में से स्ट्रेट रहना चाहता है ना, अल्लाह की तरफ जाना चाहता है, उससे ताल्लुक बनाना चाहता है, रिलेशनशिप कॉन्टैक्ट बिल्ड करना चाहता है ना, उसके लिए यह नसीहत है। ये वो रास्ता है जो आसमान और जमीन के मालिक ने बताया है, ये भलाई का पैगाम है। अब तुम में से जो अपने लिए भलाई समेटना चाहता हो आगे बढ़ के इसको ले ले, नहीं चाहता हो तो तुम्हारी अपनी मर्जी है। इसलिए कह दिया लिमन शाह मिनकुम, जो तुम में से चाहे, कोई जोर जबरदस्ती के सौदे नहीं, ये तो मोहब्बतों के सौदे हैं, जो आना चाहता है आ जाए ना, कोई किसी को जबरदस्ती ला सकता है और ना ही किसी का दिल पलट सकता है। इसीलिए फरमाया ना, वमा तशाउना, और तुम्हारे चाहने से क्या होता है, इल्ला यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन, मगर ये कि अल्लाह ही चाहे जो रब है तमाम जहानों का। मैं चाह लूं आपके लिए, कोई और चाह ले, कोई भी चाह ले, किसी के चाहने से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे, उनकी चाहत से कुछ नहीं हुआ, कोई मुसलमान नहीं हुआ, जब तक अल्लाह ना चाह ले। तो अल्लाह की चाहत है, उसकी दीवी तौफीक होती है तो इंसान हिदायत पाता है, और अल्लाह की चाहत कब होती है, जब इंसान खुद उसके अंदर तड़प आ जाती है, जब इंसान खुद तड़पता है, चाहता है अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दे दे, तो आज तड़प के अपने लिए दुआ करें, अल्लाह हमें चला दे इस रास्ते पर, हमारे लिए इस रास्ते को आसान कर दे, हमें साबित कदमी दे दे इस रास्ते पर, मरते दम तक जमा दे इस रास्ते पर अपने। हम चलना चाहते हैं या अल्लाह, तो लेकिन इंसान के अपने चाहने से नहीं है, या किसी के चाहने से नहीं होगा, जब तक अल्लाह ना चाह ले। इसीलिए हदीसे कुदसी है ना, मेरे बंदे जब चाहतों की, उसमें भी बात आई ना, मेरे बंदे एक तेरी चाहत है एक मेरी चाहत है। तेरा चाह जो है ना, तेरे रब के बगैर पूरा नहीं हो सकता, तुम जितना मर्जी चाह लो, तुम चाहते हो तुम्हें खुशियां मिल जाए, तुम चाहते हो यहाँ पे तुम्हें ये मिल जाए ये मिल जाए, वो तुम्हारा चाह तुम्हारे रब के बगैर नहीं पूरा हो सकता, रब देगा तो मिलेगी। हाँ, तेरे रब का चाह तेरे बगैर पूरा हो सकता है, उसको नहीं तुम्हारी इजाजत की जरूरत है, तुम्हारी राजी होने की जरूरत। ऐ मेरे बंदे, तू वो कर जो मैं चाहता हूं तुझसे, तो मैं वो सब कर दूंगा जो तू चाहता है, लेकिन अगर तूने वो ना किया जो मैं चाहता हूं, तो मैं तुझे तेरी चाहतों में थका दूंगा, तुझे परेशान कर दूंगा, तेरे कामों को बखेर दूंगा, और आखिर में होगा वही जो तेरा रब चाहेगा। तो फिर क्यों ना वही करें जो अल्लाह चाहता है। अल्लाह ताला तो चाहता है कि आप आ जाएं उसकी तरह। इंसान अपने लिए उसकी चाहत, उसकी तड़प यह है कि मैं भागूं, मैं बच जाऊं, मैं हाय अच्छा चलो हम बच गए, अच्छा हुआ, अल्लाह की किताब से बच गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सीखने से बच गए, शुक्र है बचत हो गई, बहाना कर दिया हमने। तो जब आपके अंदर तड़प नहीं होती ना, तो अल्लाह ताला भी आपके लिए नहीं चाहता। फिर वो ऐसे ही है जैसे मिसाल के तौर पे एक समझे, माँ मसलन बच्चे को दे रही है खाना कोई, तो बच्चा उसको उठा उठा के फेंक रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, और मुंह बना रहा है। तो उसके बाद वो क्या कहती है, ठीक है अब मैंने तुम्हें देना ही नहीं है, अब तुम मांगोगे भी नहीं, मैंने नहीं तुम्हें देना, तुम्हें कदर ही नहीं है, अब मैं नहीं तुम्हें दूंगी। तो ये नहीं है कि वो देना ही नहीं चाहती, वो देना चाहती थी लेकिन इसके अंदर तलब नहीं है ना, तो उसने रोक लिया। तो अल्लाह ताला ने तो देना है, उसने इसीलिए तो उतारा ये कलाम, लेकिन जब इंसान उसकी कदर नहीं करता, उसके अंदर तड़प नहीं, इसके अंदर तलब ही नहीं, वो चाहता ही नहीं है, तो अल्लाह ताला भी फिर रोक लेता, फिर अल्लाह भी नहीं चाहता उसके लिए। तो तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता, तुम सोचते मैं दूर भाग गई, नहीं अल्लाह ने तुम्हारे लिए चाहा ही नहीं, जाओ अब तुम। तो ये देखें अल्लाह ताला ने ये सारे जो एहतमाम किए, इनको ये जो कुरान के ऊपर ये आयतें हैं, ये सारी आई हैं, ये हमें कुरान की फजीलत बताती हैं, कुरान की कदरों कीमत बताती हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम से लेके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आने तक के लिए अल्लाह ताला ने खुद गवाहियां पेश कर दी हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद देखो कितने बड़े फरिश्ते हैं, और वो अल्लाह से किस तरह से डरते हैं और किस तरह से अल्लाह ताला के हजूर आजी रखते हैं, इसकी दलील एक हदीस से भी हमें पता चलती है कि एक दफ़ा जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, और उस वक़्त आए जिस वक़्त ये अमूमन उस वक़्त नहीं आया करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देख के खड़े हो गए, सवाल किया है जिब्राइल क्या बात है, आज तुम्हारा रंग कुछ बदला हुआ है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के चेहरे पर ना बड़े फिक्र और गम के आसार थे, तो अर्ज़ किया या रसूलल्लाह अल्लाह ताला ने जहन्नुम को भड़काने का हुक्म दिया, ये जो आज हमने पढ़ा है ना जहन्नुम को भड़काया जाएगा, तो टाइम टू टाइम उसको भड़काया जाता है। तो फरमाया अल्लाह ताला ने जहन्नुम भड़काने का हुक्म दिया और मैं उसको देख के आ रहा हूं, इसलिए उसके खौफ से मेरी बुरी हालत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ जिब्राइल इस आग का मंजर बयान करो। तो जिब्राइल अलैहि सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने जहन्नुम के बारे में हुक्म दिया तो उसे 1000 साल तक भड़काया गया, तो वो सफेद हो गई, फिर इर्शाद हुआ 1000 साल तक और उसको धूंका जाए, तो फिर 1000 साल तक उसको भड़काया गया तो वो सुर्ख हो गई, फिर 1000 साल तक धूंकने का मजीद हुक्म दिया गया तो वो स्याह हो गई। अब उसकी हालत यह है कि ना उसकी चिंगारियां चमकती हैं और ना उसके शोले बुझते हैं। खुदा की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ भेजा है, अगर जहन्नुम एक सुई के सुराख के बराबर भी खोल दी जाए तो उसकी गर्मी से सारे जमीन वाले मर जाएं, और खुदा की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ मबूस किया है, अगर जहन्नुम का एक दारोगा अहले जमीन की तरफ जाहिर होके झांक ले तो उसकी बदसूरती और बदबू की वजह से तमाम अहले जमीन मर जाएं। उस जात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ भेजा है, अगर जहन्नुम की किसी जंजीर का एक हल्का दुनिया के बड़े से बड़े पहाड़ पर रख दिया जाए तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, यानी अपनी जगह पे ना ठहर सके। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जुबानी जहन्नुम का ये हाल सुन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर रोए कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया बस करो, अब बस करो, कहीं मेरा दिल पाश पाश ना हो जाए और मैं मर ना जाऊं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मजीद हिम्मत नहीं थी सुनने की, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो वो जहन्नुम के ये हालात बयान करके खुद भी रो रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्राइल तुम भी रोते हो, हालांकि तुम्हारा मर्तबा तो अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा है। ये है वो बात जी कुव्वतिन इंद ज़िल अर्शी मकीन, बहुत बुलंद मर्तबे वाले हैं अल्लाह के नजदीक। तो जानते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, उन्होंने कहा मैं क्यों ना रोऊं, मैं तो रोने का ज्यादा हक रखता हूं, पता नहीं मेरा रुतबा अल्लाह के इल्म में इस रुतबे के इस मर्तबे के अलावा हो जो मेरा मेरा अब है, यानी अब इस वक्त पता नहीं मेरी क्या सिचुएशन हो, इस वक्त क्या है मेरा मकाम अल्लाह के यहाँ। मुझे मालूम नहीं कि मेरा, हो सकता है अल्लाह ताला मेरा इम्तिहान ले जैसे इबलीस का इम्तिहान ली, हालांकि वो तो फरिश्तों के साथ था, और मुझे नहीं पता चला पता हो सकता है कि अल्लाह ताला मेरी आजमाइश करे जिस तरह हारूत और मारूत की आजमाइश की थी। ये सुन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राइल अलैहि सलाम दोनों रोते रहे। अल्लाह अकबर, हालांकि वो फरिश्ते हैं और फरिश्तों के लिए कोई जहन्नुम नहीं है, इतना ज्यादा वो बुलंद मर्तबा रखते हुए भी अल्लाह ताला से इस तरह डरते हैं, इतना बड़ा उनका मकाम है जिनके लिए खुद अल्लाह ताला गवाही दे रहे हैं कि इनका बहुत बड़ा मकाम है मेरे नज़दीक। ऐसा फरिश्ता लेकर आ रहा है इस कुरान को, और ऐसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान को लेकर आए, उनकी जो सुन्नत है सबसे बड़ी, हम और उनकी सुन्नतों को देखते हैं, खाना खाने की देखते हैं, ठीक है, उठने बैठने चलने फिरने की सुन्नतों को देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी सुन्नत क्या है, क्या है सबसे बड़ी सुन्नत? इस कलाम को आगे पहुंचाना, इसकी तबलीग करना, इसकी नशर इशात करना, यही है ना जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, नबूवत के बाद सारा वक्त लगा दिया। तो इस सुन्नत को भी तो पूरा करें ना, इस कलाम का हक अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला इस कलाम को हमारे हक में हुज्जत बनाए, हमारे खिलाफ हुज्जत ना बनाए। अल्लाह ताला इसको हमारा सिफारशी बना दे कयामत के दिन, अल्लाह हमें इसके ऊपर अमल करने वाला बना दे, इससे दूर भागने वाला नहीं इसको लेकर चलने वाला बना दे, अल्लाह हमारी कब्र में इसको हमारा साथी बना दे, हशर में इसको हमारा साथी बना दे, अल्लाह इस ज़िंदगी में भी हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे और इस रास्ते को हमारे लिए आसान फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।